ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कल की प्रतिनिधि सभा बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने के लिए नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले ने अपने सांसदों को की व्हिप जारी। व्यावसायिकता और उद्यमशीलता के माध्यम से रोजगार सृजित करने की बात पर प्रधानमंत्री ओली ने दिया जोर। जुमला की 30 स्वास्थ्य संस्थाओं में विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हुई लागू और अमेरिका ने रोकी यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले ने कल होने वाली प्रतिनिधि सभा बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी की है। प्रतिनिधि सभा की कल दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में सरकार द्वारा लाए गए सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी कुछ नेपाल आइनों को संशोधित करने वाले अध्यादेश 2081 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन अध्यादेश 2081 और आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश अभिवृद्धि संबंधी कुछ नेपाल आइनों को संशोधित करने वाले अध्यादेश 2081 सहित 5 अध्यादेशों को संसद से पारित करवाने के लिए दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को अनिवार्य उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि व्यावसायिकता और उद्यमशीलता के माध्यम से रोजगार सृजित करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आज काठमांडू में नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ के 78वें वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये कहने के बजाय कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए, अब व्यावसायिकता और उद्यमशीलता का विकास करना होगा जिससे अपने आप रोजगार सृजित होंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान की भावना अनुसार नागरिकों की स्वास्थ्य क्षेत्र में समान पहुंच दिलाने और स्वास्थ्य सेवा के स्तर में वृद्धि करने की ओर ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। आज नेपाल चिकित्सक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने ये बात कही। जुमला की 30 स्वास्थ्य संस्थाओं में विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू की गई है। ऑनलाइन अभिलेख रखने के हिसाब से जिले के 8 स्थानीय तहों की 30 स्वास्थ्य चौकियों में विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू की गई है। ये जानकारी जन स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुमला के प्रमुख कृष्ण सापकोटा ने दी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि हुलाकी राजमार्ग केंद्रित अभियान ने जनता के साथ पार्टी के संबंध को जीवंत किया है। आज नेपालगंज विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि जनता के मन की बात को समझने के लिए जनता के बीच पहुंचने के हिसाब से अभियान चल रहा है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने रूपंदेही जिले के भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि इस विमानस्थल से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और नेपाल के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रचुर संभावनाएं हैं जिससे देश आर्थिक समृद्धि हासिल कर सकता है। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक संत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई का 14वां स्मृति दिवस आज देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संत नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई केंद्र द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर में आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेपाली कांग्रेस और इसके सहयोगी संगठनों ने देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भट्टराई 2046 साल में तंत्र की पुनर्स्थापना के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने और 2015 साल में संसद के सभामुख भी रहे। उनका जन्म 1981 पूस 8 गते को हुआ था और 2067 फागुन 20 गते को उनका निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकसित करने की आवश्यकता है। नेपाल वन प्राविधिक संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वन से देश की आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए वन उद्यम के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने कहा कि वन क्षेत्र के विकास, संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ वन से रोजगार बढ़ाने में वन प्राविधिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। गत असोज दूसरे सप्ताह की बाढ़ से क्षतिग्रस्त वीपी राजमार्ग की मरम्मत को तेज किया गया है। डिवीजन सड़क कार्यालय भक्तपुर ने बताया कि राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से जिसमें कावरे प्लांट चौक के नमो बुद्ध नगर पालिका के चौकी डाड़ा से लेकर सिंधुली के सीमा स्थल नेपाल थोक तक के अस्थायी मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी गई है। कार्यालय के प्रमुख सीनियर डिवीजनल इंजीनियर सुमन योगेश ने बताया कि आने वाले बरसात के मौसम में यातायात अवरोध न हो और नियमित संचालन सुनिश्चित हो सके इसके लिए रोशी क्षेत्र में मरम्मत कार्य चल रहा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के यात्री आज मोहतरी गांव पालिका के मडे पहुंचे हैं। कल सोमवार को जलेश्वर में पांचवें दिन रात्रि विश्राम करने के बाद यात्री मिथिला बिहारी श्रीराम और किशोरी जी सीता जी की प्रतिमा बालीडोली के साथ मडे पहुंचे हैं। फागुन अमावस्या के दिन धनुषा के कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से शुरू हुई 15 दिनों की डोला यात्रा में धनुषा, मोहतरी और भारत के मधुबनी सहित 133 किलोमीटर के दायरे में यात्रा की जाएगी। आज रामेछाप के माझी समुदाय ने लदी कोशी पूजा की। माझी समुदाय की पहचान से जुड़े इस पूजा के अवसर पर तामा कोशी, सुनकोशी और अन्य नदियों के किनारे पूजा अर्चना की गई। माझी समुदाय के महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाए जाने वाले लदी पूजा को हर साल नदी किनारे आयोजित किया जाता है। निर्माण के अंतिम चरण में पहुंचे नागढुंगा सिसने खोला सुरंग मार्ग का काम रुक गया है। स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद कल से सुरंग मार्ग के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर का काम बंद हो गया है। ये जानकारी सिसने खोला सुरंग मार्ग निर्माण परियोजना के वरिष्ठ विभागीय अभियंता संजय पंथी ने दी। बताया गया है कि परियोजना के कारण सुरंग मार्ग के नजदीक स्थित कुछ घरों पर असर पड़ने की बात को लेकर स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुरंग मार्ग का काम रोक दिया गया है। जिला प्रशासन कार्यालय सोलोखुम्बू द्वारा पालिका में राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण किया गया है। कार्यालय द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार संबंधित पालिका में 10,148 परिचय पत्र इसी फागुन 23 गति से वितरित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय सोलोखुम्बू के शाखा अधिकृत नगेंद्र कुमार श्रेष्ठ ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक रहा है। इस घटनाक्रम की खबर सबसे पहले अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जब तक यूक्रेन के नेताओं की ओर से शांति के लिए सद्भावपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, तब तक अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सभी मौजूदा सैन्य सहायता रोक रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में फिलहाल न तो अमेरिकी रक्षा विभाग और न ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टिप्पणी की है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि जो अमेरिका सैन्य सांजो सामान यूक्रेन नहीं पहुंचा है उसे रोक दिया जाएगा। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप की तीखी नोकझोंक के बाद से ही घटनाक्रम तेजी से बदला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कल की प्रतिनिधि सभा बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने के लिए नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले ने अपने सांसदों को की व्हिप जारी। व्यावसायिकता और उद्यमशीलता के माध्यम से रोजगार सृजित करने की बात पर प्रधानमंत्री ओली ने दिया जोर। जुमला की 30 स्वास्थ्य संस्थानों में विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हुई लागू और अमेरिका ने रोकी यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।